शादी हो जाने के बाद इशिका आशिका से एक बार भी नहीं मिली थी और उसे अभी भी आशिका की चिंता सता रही थी। हालांकि उसे राजवंश फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन जिस तरह से शादी में राजवंश फैमिली रिएक्ट कर रही थी और सब आशिका के खिलाफ थे, उससे एक बात साफ थी कि आशिका की जिंदगी अभिमान से शादी करने के बाद आसान नहीं रहने वाली है। रात के वक्त अभिमन्यु और ऋषिका अभिमान और आशिका से मिलने के लिए आए थे, जहां आते ही उनकी मुलाकात निशा से हुई थी। निशा के रिश्ते उनके साथ अच्छे थे, फिर भी उसने आज अभिमन्यु की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधा ऊपर चली गई थी। अभिमन्यु को यही लगा कि उसने जिस तरह आशिका और अभिमान की शादी करवाई थी, शायद उसके बाद से निशा नाराज है। वहीं ऊपर कमरे में रचित के जाने के बाद आशिका और अभिमान एक दूसरे के साथ अकेले थे। अपनी शादी का सच जानने के बाद आशिका को झटका जरूर लगा था, पर हाँ, इसमें अभिमान की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए आशिका बेवजह उससे भी नहीं लड़ना चाहती थी। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने बता तो दिया मेरी कोई गलती नहीं थी, उल्टा मैं तो हर तरह से तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, अभिमान ने आशिका की आंखों में गुस्सा देखकर हड़बड़ाते हुए कहा। तुम पर नहीं, तुम्हारे फ्रेंड पर गुस्सा आ रहा है। तुम सब लोग हैकिंग को मजाक समझते हो, लेकिन ये तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को समझना होगा कि हैकिंग दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं होती है। कई बार इससे आशिका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बीच में रुक गई थी। उसने सिर झटका और बात बदलते हुए कहा, प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कोई उल्टी सी भी हरकत नहीं करोगी। अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को भी बर्बाद नहीं करने दूंगी, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये गलत है अभिमान। अच्छा ठीक है देवी माँ, जैसा आप चाहें, लेकिन गुस्सा करना तो बंद करो। कभी तुमने मुझसे नॉर्मली बात भी की है? अभिमान ने चिढ़कर जवाब दिया। जब भी वो सोचता था कि वो आशिका को अपने दिल की बात कहेगा या उसके साथ अच्छा वक्त बिताएगा, वो उसकी किसी न किसी बात से नाराज हो जाती थी। आशिका ने खुद को शांत करने के लिए 2 से 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ी। ऐसा नहीं था कि उसे अभिमान के जज्बात समझ नहीं आते थे या उसकी आंखों में खुद के लिए इमोशंस नहीं दिखते थे, पर वो उनसे भागना चाहती थी। मुझे भूख लगी है, अचानक आशिका बोली, ताकि अभिमान का ध्यान भटक जाए और बातचीत का रुख भी बदल जाए। अभिमान ने उसकी बात पर हामी भरी और नीचे कॉल करने वाला ही था कि तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अभिमान ने दरवाजा खोला तो सामने अभिमन्यु और ऋषिका थे। उन्हें देखकर उन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमन्यु ने अभिमान की आंखों में झुंझलाहट को नोटिस कर लिया था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर ना दिखने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी शादी को 2 दिन हुए हैं और ये हाल है? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ, मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी चाचू, लेकिन इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, अभिमान ने लाचारी से सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु ने आशिका की तरफ देखा तो वो अभिमान को ही घूर रही थी। इशिका ने उन दोनों को छेड़ते हुए कहा, माना कि तुम दोनों की शादी के रजिस्ट्रेशन को 5 साल हो गए हैं, पर 5 साल पुराने कपल की तरह बिहेव करना बंद करो। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखोगे तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। इशिका ने अभिमन्यु को इशारा किया था कि वो अभिमान से बात करके उसे समझा सके। अभिमन्यु अभिमान के साथ अंदर वर्क स्पेस में चला गया था तो वहीं इशिका और आशिका बाहर कमरे में थी। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, इशिका ने आशिका से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है, दोनों का मूड क्यों अपसेट है? इन लोगों को मेरा प्रोफेशन मजाक क्यों लगता है? इशिका, हैकिंग जोक नहीं है और आप भी अच्छे से जानती हैं कि एथिकल हैकिंग नाम की भी चीज़ होती है और कई बार कुछ देशों की सुरक्षा तक इस पर डिपेंड करती है, लेकिन इन्हें बस ये दूसरों का डेटा चोरी करने का तरीका लगता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इन लोगों ने मेरी शादी अभिमान के साथ कैसे रजिस्टर की थी। इन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट तक हैक कर ली थी। और आशिका चिढ़ते हुए सब कुछ बोल रही थी, उसके चेहरे के भाव और आवाज़ साफ बता रही थी कि वो कितना गुस्से में है। इशिका उसके पास आई और उसका कंधा सहलाते हुए बोली, जो हो गया है उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा, अभिमान दिल का बुरा इंसान नहीं है, अभिमन्यु ने मुझे बताया था कि इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। आशिका, मैं तुम्हारी झुंझलाहट को अच्छे से समझ रही हूँ, तुम हमेशा अकेले रही हो, किसी के साथ एडजस्ट करके रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम इस तरह अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकती हो। अब तक तुम रिश्तों और इमोशन से दूर भागती आई हो, लेकिन अभिमान तुम्हारा पति है, अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना है तो भागना बंद करना होगा। आशिका के बिना कहे ही इशिका सब समझ गई थी। आशिका जो अब तक गुस्से में थी वो अचानक बिल्कुल शांत हो गई थी। इशिका सही कह रही थी, उसे अभिमान से दिक्कत नहीं थी, बस उसे अपने इमोशन से दिक्कत थी जो अभिमान के लिए जाग रहे थे। कोई नहीं चाहता हम साथ रहें, मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया और ऐसे में मुझे उसकी आदत लग गई तो फिर से मेरे लिए अपनी लाइफ संभालना मुश्किल हो जाएगा, आशिका ने मायूस स्वर में कहा। अब वो किसी तरह की बहस करने के बजाय अपने दिल के भावों को खुलकर ऋषिका के सामने रख रही थी। वो नहीं छोड़ेगा, अगर अभिमन्यु ने राजवंश फैमिली के किसी इंसान पर इतना यकीन दिखाया है तो वो सच में इसके काबिल है। मैं अभिमान से ज्यादा नहीं मिली हूँ, पर तुम्हें उस पर यकीन करना होगा, वो एक अच्छा इंसान है, इशिका ने उसे समझाया। मैं नहीं कह रही कि वो एक बुरा इंसान है, पर उसके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। वे मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने अभिमान से शादी करके कोई पाप कर दिया हो। मेरी पहचान यहाँ अभिमान की पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि तृप्ति बजाज की बेटी के तौर पर है, और सब उस औरत से नफरत करते हैं। माना वो नफरत के ही लायक है, लेकिन मेरी क्या गलती है? मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अभिमान उनकी बातों में आ जाएगा और मुझे छोड़ देगा। आशिका ने अपने दिल का डर इशिका के सामने खुलकर रखा। वैसे भी आज आशुतोष जिस तरह अभिमान को चैलेंज कर रहे थे कि एक दिन वो खुद आशिका को छोड़ेगा और उनके पास माफी मांगने के लिए आएगा, उसके बाद आशिका के दिल में ये डर बैठ गया था। जहां बाहर इशिका आशिका को समझा रही थी, तो वहीं अंदर अभिमान और अभिमन्यु बैठे हुए थे। अभिमान चेहरे से परेशान लग रहा था और उसकी आंखों में कई जज्बात उमड़ रहे थे। मैं उसे पहले से जानता हूँ और वो पिछले 1.5 महीने से मेरे लिए काम कर रही थी। काश मैं उसे बता पाता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उस वक्त जब मैंने शादी के मंडप में उसे दुल्हन के तौर पर देखा, तब मेरे दिल को क्या फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई है और इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह है चाचू, उसे इमोशंस फील नहीं होते हैं। मैं करीब जाऊं तो गुस्सा होती है, कुछ बोलूं तो गुस्सा करती है, कुछ समझाऊं तो भी गुस्सा करती है। अभिमान आशिका की शिकायतें लगा रहा था। पूरी बात सुनने के बाद अभिमन्यु ने सर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा सामना एक ऐसे बच्चे के साथ हो रहा है जिसे कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया। फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ बात कैसे की जाती है, या कौन से इमोशंस पर कैसे रिएक्ट किया जाता है। अभिमान हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। उसे आशिका के बारे में सच में कुछ पता नहीं था।
लगता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इशिका ने बताया कि आशिका बहुत छोटी थी, तभी तृप्ति ने उसे घर से निकाल दिया था। एक अनजान देश में उसने थोड़ा टाइम अनाथाश्रम में बिताया था, तो ज्यादातर सड़कों और पार्क में सोते हुए। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, और जो माँ आज उसे खुद के जैसे बताने का दावा कर रही है, उसने उसे 12 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था। अभिमान, वो रिश्तों की वैल्यू नहीं जानती, अकेले रही है और ऊपर से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ भी सब उसे जज कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तुम्हें उसे हर तरीके से संभालना होगा, और अगर सच में उससे प्यार है तो उसके हर एक पहलू को अपनाना होगा, अभिमान बोला। अभिमान को अब कोई शिकायत नहीं थी। शायद उसकी शिकायतें इसी बात के साथ मिट गई थीं जब उसे ये पता चला था कि आशिका को इमोशंस इस वजह से दिखाने नहीं आते थे, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं था जिसे वो प्यार कर सके या अपने दिल की बात कह सके। मैं उसे संभालने की कोशिश करूंगा, अभिमान ने जवाब दिया। तो तुम उससे प्यार करते हो? अचानक अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, पर जब भी कहने की कोशिश करता हूँ दूर भागती रहती है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसे अजीब चीज़ें चाहिए होती हैं। कल रात तो वो, अभिमान बोलते हुए रुक गया था। उसे ये कहते हुए भी शर्म आ रही थी कि किस तरह आशिका ने उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। अचानक अभिमन्यु हंस पड़ा था, और जिस तरह अभिमान के कान लाल हो रहे थे उसे समझते देर नहीं लगी। उसने सिर हिलाकर कहा, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। उसकी गर्दन के निशान बहुत कुछ कह रहे थे। शायद वो सबको ये प्रूफ करना चाहती होगी कि उन्हें उसे तुम्हारी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। बिल्कुल, मुझे लगा वो टाइम लगाएगी और मैं खुद टाइम देना चाहता था। कई बार वो बहुत बोल्ड हो जाती है, अभिमान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, क्योंकि वो इंडिया से नहीं है, जहाँ से वो आई है वहाँ ये सब बहुत नॉर्मल है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ इशिका और आशिका भी अब नॉर्मल बात कर रही थीं। इशिका ने आशिका को यही समझाया था कि उसे अपने दिल से ये इनसिक्योरिटी निकालनी होगी कि सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। आशिका ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, थोड़ा जिद्दी है पर इतना भी बुरा नहीं है। मेरी हर उल्टी सीधी डिमांड पूरी करता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है और यही कोशिश करता है कि मैं खुश रह सकूं। बेशक, तुम्हारी गर्दन पर बने लव बाइट्स बता रहे हैं कि वो तुम्हारी हर उल्टी सीधी डिमांड पूरी करता है। चलो अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, बाकी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं तुम्हें खुद को बदलने को नहीं कह रही हूँ, पर तुम घर वालों से बात करो, उनके साथ टाइम बिताओ, ताकि वे तुम दोनों के रिश्ते को प्यार से एक्सेप्ट करें, इशिका ने उसे समझाया। आशिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। आशिका को इंडियन कल्चर के बारे में ना के बराबर पता था, न तो उसे कोई सिखाने वाला था और ना ही वो पहले कभी इंडिया आई थी। इशिका आशिका के साथ नॉर्मल बातें करने लगी, तो वहीं अभिमन्यु के चेहरे के भाव अब थोड़े गंभीर हो गए थे। उसने अभिमान से पूछा, अभिमान, क्या तुम जानते हो कि निशा भाभी अभी बाहर से कहीं आ रही थी? जहाँ तक मुझे पता है वो अकेले कहीं नहीं जाती हैं, उन्होंने मुझे भी इग्नोर किया। हाँ, वो इस शादी से कुछ खास खुश नहीं है, ऊपर से मिस्टर राजवंश और जिस तरह सब ऐश के खिलाफ हो गए हैं तृप्ति बजाज की वजह से, उससे उनका मन भी डिस्टर्ब हो गया है। मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिला। मैं देखता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, अभिमान ने जवाब दिया। अगर ऐसा चल रहा है तो तुम्हें सच में उनके साथ टाइम बिताने की जरूरत है। पहले तुम उनके अलावा किसी और के क्लोज नहीं थे, उन्हें यही लग रहा है कि आशिका ने तुम्हें उनसे छीन लिया है। तुम शुरुआत उनसे करो ताकि वो आशिका को एक्सेप्ट करें। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन मुझे डर है कि राजवंश फैमिली के लोग साजिशें करने से बाज नहीं आते हैं। वे तुम दोनों को अलग करने की कोशिश जरूर करेंगे, अभिमन्यु ने उसे समझाया। अभिमान ने सिर हिला दिया था, हालांकि वो इस मामले को काफी नॉर्मली ले रहा था। वहीं अभिमन्यु भी अभिमान के साथ आशिका के शक के बारे में बात करना चाहता था। जब उसने सुबह ये कहा था कि उसे शक है कि वो आशुतोष सिंघानिया की बेटी हो सकती है, फिर अभिमन्यु ने बिना किसी सबूत के बात करना सही नहीं समझा। अभिमन्यु अभिमान के साथ कमरे से बाहर आ गया था और अब आशिका के चेहरे के भाव भी नॉर्मल लग रहे थे, जिससे अभिमान ने राहत की सांस ली। उसे यही लगा था कि आशिका अभी भी उससे नाराज होगी। तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं हाउस हेल्पर को कहता हूँ, वो हम चारों के लिए खाना ऊपर भिजवा देंगे, अभिमान ने आशिका की तरफ देखकर परवाह जताते हुए कहा। हम चारों के लिए नहीं, सिर्फ तुम दोनों के लिए, हम बस तुमसे मिलने के लिए आए थे। तुम दोनों ठीक हो यही काफी है, बाकी एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो रात को वहां रुकना नहीं चाहता था। अभिमान और आशिका ने उनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने ही मना कर दिया था और वहां से चले गए। इशिका जिद करके गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो वहीं अभिमन्यु इस वक्त मिस्टर सिंघानिया को मैसेज कर रहा था। मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे मिलना है और आपकी खोई हुई बेटी के बारे में बात करनी है, अभिमन्यु ने मैसेज किया। आशुतोष से ही वो इस सच को बेपता करने की शुरुआत कर सकता था और इसकी पहल उसने कर दी थी।